¿Vano ven?
सब लोग
हाँ जय
भानु बेन पंडित जी आवी गया।
हाँ मनोरमा बेन एवं करो तमे
हाँ
म्यूट हाँ तमे म्यूट कर नाखो।
हाँ
आपड़े म्यूट
हाँ हूँ म्यूट करू छू। हाँ म्यूट करू छू।
हाँ जय जिनेन्द्र।
जय जिनेन्द्र। जय
जिनेन्द्र। हाँ रजनी भाई आजे तमे छिनवाणी स्तुति लेजो। हाँ पंडित जी एक मिनट के बाद करते हैं शुरू, शायद लोग आते होंगे।
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
રસિક ભાઈ તમે છો?
હેલો।
હા હેલો કંચનબેન। હા બસ અભી પંડિતજી અભી શરૂ કરતે હૈ કંચનબેન।
ઠીક હૈ।
હા પંડિતજી કરતે હૈ શરૂ।
હા शुरू करें, मंगलाचरण शुरू करें। ठीक। एक मिनट। हाँ जी चालू करता हूँ। वंदे तू सब से दे शुभम चल मनोभवम गदिम पते बोछामि समय पाहु मैण मोषुद केवली भणिदम नमा समय साराए स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर छिदे। ये मोक्ष समय सार जी परमागम शास्त्र का पुण्य पाप अधिकार अपना चल रहा है। अभी तक इसमें जो अपन ने गाथाएं ली हैं 45 नंबर गाथा से लेकर 51 नंबर तक की गाथा पे अपन आ चुके हैं और उनमें जो अपन ने अभी समझ लिया है अपने ख्याल में आ गया है उसका प्रमेय का अपन रिवीजन एक बार कर देते हैं। जो 145 नंबर की गाथा में पुण्य पाप अधिकार में विषय को उठाया है आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने, उसमें उन्होंने सीधा एक प्रश्न उठाया कि अशुभ को कुशील और शुभ को सुशील जानना चाहिए, और उसका फिर समाधान किया कि नहीं अशुभ कुशील तो है ही लेकिन शुभ भी कुशील ही है, क्योंकि जो संसार में जीव को परिभ्रमण कराता है दाखिल करता है उसको सुशील कैसे कह सकते हैं। ऐसा कह करके दोनों को कुशील बताया, पुण्य को पाप को भी कुशील बताया और पुण्य को भी कुशील ही बताया। ये 145 गाथा में उन्होंने ये बात कही और उसके तुरंत बाद जो 146 गाथा प्रारंभ हुई उसमें उन्होंने दोनों कर्मों को यानी पाप कर्म को और पुण्य कर्म को दोनों को बिना किसी अंतर बताए बिना बंध का कारण सिद्ध किया, और बंध का कारण सिद्ध करने के लिए एक दृष्टांत दिया बेड़ी का दृष्टांत कि जैसे सोने की बेड़ी जीव को बांधती है और लोहे की बेड़ी भी जीव को बांधती है, दोनों प्रकार की बेड़ी उस पुरुष को बंधन में डालती है जकड़ती है, इसी तरह से जो अशुभ कर्म है अथवा शुभ कर्म है ये दोनों ही बंधन में डालने वाले हैं। शुभ भाव करने वाले को भी बंध ही होता है और अशुभ भाव करने वाले को भी बंध ही होता है, इसलिए बंध की समानता देख करके पुण्य और पाप में दोनों में एकत्व नजर आता है, समानपना नजर आता है, भेद नजर नहीं आता है। आगे जब इसके बाद उन्होंने गाथा प्रारंभ की तो उसमें उन्होंने ये कहा कि जब दोनों कर्म पाप कर्म और पुण्य कर्म दोनों एक ही प्रकार से बंध के हेतु हैं, समान रूप से बंध के कारण हैं, तो फिर वे निषेध करने लायक हैं। वास्तव में उनका निषेध करना चाहिए, और निषेध करते हुए उन्होंने ऐसा लिखा कि इसलिए ये जो कर्म हैं, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, दोनों कर्मों को कुशील जानकर उनके प्रति राग मत करो और उनका संसर्ग मत करो। राग मत करो माने उनको उपादेय मत मानो, और संसर्ग मत करो माने उनमें उन शुभाशुभ भावों में मत प्रवर्तो। इस तरह से राग और संसर्ग का निषेध करो। अगर उनमें उनको राग करोगे और इसमें प्रवर्तन करोगे तो नियम से तुम्हारी स्वतंत्रता का नाश होगा और आत्मा कभी स्वाधीन नहीं हो पाएगा। 148 नंबर की जब गाथा आई तो उसमें आचार्य कहते हैं कि अब यहाँ पर हम दृष्टांत देके बताते हैं कि ये दोनों कर्म ही वास्तव में प्रतिषेध हैं। ज्ञानी द्वारा उनका प्रतिषेध करना चाहिए तो ज्ञानी प्रतिषेधक होगा और ये पुण्य पाप के कर्म प्रतिषेध होंगे। तो यहाँ लिखा जिस प्रकार कोई पुरुष किसी अन्य पुरुष को कुत्सित सील वाला जानता है तो उसको ना तो वो उसके प्रति राग करता है और ना ही वह उसका संसर्ग करता है, और बल्कि उसको छोड़ देता है, उसका त्याग कर देता है। इस तरह से शुभ अशुभ कर्म को भी जो ज्ञानी जान लेते हैं कि ये दोनों वास्तव में कुशील भाव हैं, ये आत्मा के स्वभाव नहीं हैं, तो ज्ञानी ना तो उन शुभ अशुभ भावों में राग करता है और ना ही उन रूप पर नमन करता है, उनसे संसर्ग करता है और उन्हें छोड़ देता है, छोड़ के अपने स्वभाव का आलंबन करता है। ऐसा रिवीजन में 148 नंबर की गाथा में बात आई। अब 147 नंबर की गाथा में आई, और 148 में ये बात आ गई कि उन दोनों को ना संसर्ग करना चाहिए ना राग करना चाहिए। 149 नंबर गाथा में ये तो दृष्टांत दिया कि जैसे कोई पुरुष कुछ से सील वाले पुरुष को जानकर ना तो उनका उनकी रुचि करता है, ना राग करता है और ना संसर्ग करता है। ये हो गया दृष्टांत। सिद्धांत में भी ऐसा घटाया 149 गाथा में। इसी प्रकार कर्म प्रकृतियों के स्वभाव को जानकर, कैसा जानना, कुच्छित स्वभाव जानना। ये कर्म प्रकृतियां चाहे अशुभ हों चाहे कर्म प्रकृतियां शुभ हों, वे कुत्सित माने विपरीत स्वभाव वाली हैं, ज्ञान के स्वभाव की विरोधी हैं। इसलिए ज्ञानी उनमें उनमें राग भी नहीं करता है और उनका त्याग करता है, और त्याग करते हुए उनके उनके राग का और संसर्ग का त्याग करता है और अपनी स्वतंत्रता को कायम रखता है। ऐसा ज्ञानी का ये प्रणमन है, उनके स्वरूप को जानकर ज्ञान की तरफ आता है, ज्ञान को आश्रय लेने लायक मानता है, और जो पुण्य पाप परिणाम हैं उनको वर्जन करने लायक मानता है, निषेध करने लायक मानता है, और निषेध करने लायक मानता ही नहीं है, निषेध करके उन शुभाशुभ भावों में न प्रवर्तन करके अपने शुद्ध स्वभाव में प्रवर्तन करता है, आत्मा का आश्रय लेता है, अनुभूति में प्रवर्तन करता है। 149 नंबर की गाथा तक तो ये बात आई। अभी 150 नंबर की गाथा में अपन ने जो देखा था वो ये देखा था कि दोनों कर्मों को बंध का हेतु भी बताया गया है और दोनों कर्मों को आगम में भी निषेध किया गया है। इसलिए आगम से अब सिद्ध करते हैं कि दोनों कर्म, अभी तो हेतु से सिद्ध किया माने तर्क देकर सिद्ध किया कि दोनों कुशील हैं, ये दोनों बंध के कारण हैं, ये इनके आश्रय से अपनी स्वतंत्रता का नाश होता है, इसलिए इनको कुछ से सील वाला जान के इनसे दृष्टि हटाना, इनमें रुचि नहीं करना, इन रूप प्रणमन नहीं करना, अभी तो ये इन्होंने तर्क द्वारा सिद्ध किया। अब आगम के द्वारा समर्थन करते हैं कि आगम में भी ऐसा ही लिखा है कि रत्तो बंधदि कम्मम, रागी कर्म को बांधता है और मुंचदि जीवो विराग संपत्तो, और जो विराग से संपन्न है, वैराग्य संपन्न है, वैराग्य वाला है, वो वास्तव में कर्म बंध से छूटता है। ये ऐसा हो जिनो विदेश हो, ये जिनेन्द्र भगवान का उपदेश है, ये गजब बात है। जब भी आगम का समर्थन देते हैं तो आगम चूंकि जिनेन्द्र के बिना नहीं उत्पन्न होता है, इसलिए उसमें उनको जिनेन्द्र को भी याद करते हैं। ऐसो जिनो विदेश हो, ऐसा जिनेन्द्र भगवान का उपदेश है। तम मा कमेशु महारज्जय, और क्या उसका निष्कर्ष निकाला जिनेन्द्र के उपदेश में, इसलिए कर्मों में राग नहीं करना चाहिए, चाहे वो अशुभ कर्म हो चाहे वो शुभ कर्म हो, राग नहीं करना। क्यों नहीं करना राग? कि रत्तो बंधति कम्मम, राग बंध को करता है। और मुंचदि जीवो विराग संपन्नो, और वैराग्य से जीव बंधन से मुक्त होता है और राग से जीव बंधन में पड़ता है। तो जिन्हें बंधन में ना पड़ना हो, अथवा जो अनादिकाल से बंधन में पड़े हैं, उसका तो कारण पुण्य पाप है। अब अगर बंधन से छूटना हो तो राग को छोड़कर वैराग को धारण करना होगा, और वैराग को धारण करके कर्मों में राग नहीं करना होगा, कर्मों का राग त्यागना होगा, और अपने शुद्धात्मा के प्रति रुचि करना होगी। शुद्धात्मा में एकाकार होना होगा, शुद्धात्मा के एकाकार में आत्मानुभूति प्रगटेगी, वो आत्मानुभूति वैराग्य का फल होगा, और उस फल में संवर निर्जरा होगी और जीव मुक्ति को प्राप्त करेगा। एशो जिनो उपदेशो, ऐसा जिनेन्द्र भगवान का उपदेश है। ये 150 नंबर गाथा का सार है। इसके बाद में कल ये गाथा भी आ गई थी 151, इसी को शुरू किया था अपन ने, और उस गाथा में ज्ञान को मोक्ष का हेतु सिद्ध किया जा रहा है। तो उस गाथा में ये दिखाया था कि वास्तव में देखा जाए तो जो परम पदार्थ है माने परमार्थ है, परमार्थ माने आत्मा है, वो आत्मा का दूसरा नाम सम ओ, वास्तव में उसका नाम समय है। समय क्यों है? क्योंकि दो कारणों से उसका नाम समय है। एक तो ये सम माने होता है सम्यक प्रकार से, अय माने परिणमन करे, कि जो वास्तव में द्रव्य की सीमा में रहकर सम्यक प्रकार से परिणमन करता है वो समय कहलाता है। दूसरा अर्थ समय का ये भी है कि सम माने युगपत और अय माने गमन करे माने जाने, जो युगपत दोनों काम करे, जानने का भी काम करे और परिणमने का काम करे। परिणमने का काम अलग है, जानने का काम अलग है। जानने का कार्य ज्ञान का है और परिणमने का कार्य में निमित्त बनने वाला द्रव्यत्व गुण है। द्रव्यत्व गुण के निमित्त से प्रत्येक द्रव्य में पर्याय समय समय परिणमती हैं, और ज्ञान गुण के निमित्त से प्रति समय पर्याय परिणमती हुई भी समय समय जानन रूप परिणमती हैं। तो आत्मा में जाननपना भी चलता है समय समय, और परिणमन भी चलता है समय समय, इसलिए उसका नाम समय है, उसी आत्मा का नाम समय है। फिर इसमें ये भी लिखा कि वो आत्मा शुद्ध है, और शुद्ध भी आत्मा कहा इसलिए शुद्ध उसके लिए कहा कि वास्तव में देखा जाए तो वो आत्मा कभी भी पक्षों पक्ष और नए पक्ष से संबंधित नहीं होता है। नए पक्ष जहाँ तक है वहाँ तक आत्मा में अशुद्धि रहती है। क्यों? क्योंकि नए का पक्ष राग रूप होता है। नए पक्षपात वाला जीव कभी भी वीतरागता का अनुभव नहीं कर सकता है। निश्चय का ही पक्ष क्यों ना हो, पक्ष व्यवहार का तो अच्छा है ही नहीं, लेकिन निश्चय का पक्ष भी अच्छा नहीं है, क्योंकि व्यवहार का पक्ष भी राग रूप है और निश्चय का पक्ष भी राग रूप है। इसलिए जिस ज्ञान में न शुभ का पक्ष है, न कहना चाहिए व्यवहार का पक्ष है, और ना ही अशुभ और ना ही शुद्ध का पक्ष है, इन दोनों प्रकार के नयों का पक्षपात न होने से वह आत्मा वास्तव में देखा जाए तो शुद्ध है। और उसी आत्मा को केवली भी कहा है। केवली कहने का उन्होंने कारण ये माना कि वास्तव में वह आत्मा केवल चिन्मात्र वस्तु है, चेतन मात्र वस्तु है, उसका स्वभाव ही चिन्मात्रपना है, अनादि से वर्तमान में चेतन मात्र है, आगे भविष्य में भी चेतन मात्र रहता है। इसलिए आत्मा का स्वभाव देखा जाए तो चिन्मात्र आत्मा तो केवली है। और उसी आत्मा का स्वभाव कहा मुनि भी है, मुनि मनन करने के कारण मुनि कहलाता है। तो वह आत्मा वास्तव में मनन के स्वभाव वाला होता, मनन करने के स्वभाव वाला होता है। मनन कहो कि ज्ञान कहो, वो ज्ञान मात्र परिणमन के स्वभाव वाला होने से उस आत्मा का एक नाम मुनि भी है। स्वयं ही ज्ञान स्वरूप होने से वो आत्मा ज्ञानी भी कहलाता है। ज्ञानी होने का कारण क्या है कि वो ज्ञान स्वभावी है। ज्ञान स्वभावी आत्मा को ज्ञानी कहा है। इसलिए ये सब नाम जो हैं, ये नाम उस एक परमार्थ माने परम पदार्थ के ये सब नाम हैं। ज्ञानी भी उसी को कहा है, और स्वा का भवन मात्र होने से उसको स्वभाव भी कहा है। भवन माने परिणमन, उसका स्वाका भवन माने उसमें जो परिणमन चलता है आत्मा में, वो स्वभाव रूप परिणमन चलता है, ज्ञानन रूप परिणमन चलता है। इस स्वभाव रूप या ज्ञानन रूप परिणमन होने से वो आत्मा स्वभाव मात्र है, स्वभाव उसके लिए कहा है। अथवा चैतन्य का भवन मात्र होने से उसको सद्भाव रूप भी कहते हैं। सत माने जिसकी सत्ता है, कैसी है उसकी सत्ता, भाव स्वरूप है, और भाव भी कैसा है, स्व के अनुरूप है, इसलिए स्वभाव रूप जिसकी सत्ता है उसे सद्भाव भी कहते हैं। तो इस तरह से जो परम पदार्थ आत्मा है उसके पर्यायवाची नाम ये 5-6 पर्यायवाची नाम बताए, लेकिन अंत में उन्होंने टीका में अमृतचंद्राचार्य ने खुलासा किया कि भले ही ये परमार्थ आत्मा के नाम भेद हों, लेकिन नाम भेद होने से अथवा शब्द भेद होने से वस्तु भेद नहीं है। नाम भेद तो है पर वस्तु भेद नहीं है। ये नाम भेद होने से वस्तु भेद ना होना ये अर्थ बताता है कि इन सब शब्दों का प्रयोग एक आत्मा के लिए ही किया जाता है, और आत्मा को कभी अगर केवली बोलें तो भी आत्मा जानना, परम पदार्थ जानना, उसके लिए मुनि बोलें तो भी परम पदार्थ जानना, ज्ञानी बोलें तो भी परम पदार्थ जानना, स्वभाव मात्र बोलें तो भी उसी परम पदार्थ को जानना, सद्भाव मात्र बोलें तो भी उसी परम पदार्थ को जानना, शुद्ध बोलें तो भी उसी को जानना, और परमार्थ बोलें तब भी उसी परम पदार्थ को जानना, और परम पदार्थ शब्द से कहा जाए तो भी उसी को जानना, यानी ज्ञायक शब्द से कहा जाए तो भी उसी को जानना, यानी ये शब्द भेद होने से वस्तु भेद नहीं होता ऐसा जानना, और ज्ञान को ही मुक्ति का कारण कहा है। क्यों कहा है कि ज्ञान में कर्म नहीं होते, न शुभ कर्म ज्ञान में होता है न अशुभ होता है। अरे ज्ञान होने वाले कर्मों को जान तो लेता है, कर्म को जानने वाली जो ज्ञान की पर्याय है उस ज्ञान की पर्याय में कर्म नहीं होता है। गजब बात है, ज्ञान शुभ कर्म और अशुभ कर्म ज्ञान में झलकता है, मगर झलकने से वो कोई ज्ञान में आ नहीं सकता, प्रवेश नहीं कर सकता, और वो ज्ञान की भी ऐसी महिमा है, ज्ञान उन शुभ अशुभ कर्मों के पास जा नहीं सकता और उनके रूप में परिणमन नहीं कर सकता, जानना छोड़ नहीं सकता, क्योंकि जानन उसका स्वभाव है, लेकिन परिणमन उन रूप नहीं करेगा। जानन पने की जो गिराकार पर्याय है उसमें उसका सामान्य ज्ञान ही व्याप्त होगा, ज्ञान स्वभाव से ही उसका परिणमन चलेगा, गेयों से उसका परिणमन नहीं चलेगा। इसलिए मोक्ष का कारण ज्ञान मात्र को जानना, राग रूप या पुण्य पाप रूप जो कर्म है वे कभी भी मोक्ष के कारण नहीं है। ये बात 151 गाथा में सिद्ध हो चुकी है। अब थोड़ा विषय और आगे बढ़ता है, विषय को आगे बढ़ाने के लिए अब हम देखेंगे 152 नंबर की गाथा पर विचार करेंगे। इसमें ये बात बताई जा रही है कि अथ ज्ञानम विधापयति। अब ये कहते हैं कि ज्ञान ही वास्तव में मुक्ति का कारण है, परमार्थ कारण है, इस बात को यहाँ दर्शाते हैं और इसी बात को ये सिद्ध भी करते हैं आगम से। वहाँ 152 नंबर की गाथा में ये लिखा है, परमठम यदु अठ दो जो कुणदि तवम बदम चारेदी सब तम सबम बाल तवम बाल वदम वैंति सबण हो। हिंदी में ऐसा लिखा है, परमार्थ में नहीं तेष्ट कर जो तप करें व्रत को धरें, तप सर्व उसका बाल व्रत अरु बाल व्रत बाल जिन वर ने कहा। ये कहते हैं कि जो मुनिराज परमार्थ में नहीं रुकते हैं, शुद्धात्मा में नहीं तिष्ठते हैं, शुद्धात्मा की अखंड अनुभूति नहीं करते हैं, और वे शुभ भाव का विकल्प व्रत का विकल्प करते हुए उनमें ही वे प्रवर्तन करते हैं, उनका ही आश्रय लेते हैं और ज्ञान स्वभाव का आश्रय नहीं लेते हैं, बल्कि यूं कहना चाहिए कि वे तप को और व्रत को ही आश्रय लायक मानते हैं और परमार्थ आत्मा को आश्रय लायक नहीं समझते हैं, तो उनका ये अज्ञान है, और उस अज्ञान के कारण उनका वह कहना चाहिए तप है, वो तप भी बाल तप है। ये बाल शब्द जिनागम में अज्ञान का प्रतीक माना गया है, भगवती एक आराधना नाम का ग्रंथ है, उसके अंतर्गत अनेक प्रकार लगभग 17-18 प्रकार के मरणों की चर्चा की गई है। उसमें मिथ्या दृष्टि का जो मरण होता है, भले वो मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनि तक अवस्था वाला हो, लेकिन उसका मरण जो होगा वो मरण बाल मरण कहलाता है, क्यों अज्ञान मरण कहलाता है। क्यों? क्योंकि उसको अपने परमार्थ पदार्थ की, शुद्धात्मा की प्रतीति नहीं होती है, उसकी दृष्टि नहीं होती है, उसका श्रद्धान नहीं होता है, इसलिए उसका जो मरण होता है वो बाल मरण कहलाता है। यहाँ भी अज्ञानी के जो व्रत होते हैं वे बाल व्रत होते हैं, अज्ञानी के जो तप होता है वो तप भी बाल तप होता है। बाल तप कहो कि अज्ञान तप कहो, अथवा बाल व्रत कहो कि अज्ञानता पूर्वक व्रतों का होना कहो, ये अज्ञानी में दोनों व्रतते हैं, बाल व्रत और बाल तप। ज्ञानी में कदाचित बाल व्रत और ज्ञानी में कदाचित व्रत और तप भी दिखाई दें, तब भी ज्ञानी के व्रत और तप बाल रूप नहीं होते हैं, ज्ञान रूप होते हैं। कैसे होते हैं कि वो व्रत के विकल्प का ज्ञाता होता है, वो तपस्या के विकल्प का ज्ञाता होता है, वो उन विकल्पों का कर्ता नहीं होता, उन्हें उपादेय नहीं मानता, उनसे मोक्ष का मार्ग नहीं मानता, और उन्हें हे जानकर वहां से दृष्टि को हटाता है और अपने ज्ञान स्वभाव पर ही दृष्टि लगाता है। वे मेरे ज्ञान में भले झलकते हों पर मेरे ज्ञान में आते नहीं हैं, इसलिए राग संसार की तरफ जाता है, ले जाता है, बंध की तरफ ले जाता है, और उनसे हट करके जो अपना ज्ञान स्वभाव है वो आत्मा को मुक्ति की तरफ ले जाता है। इसलिए इस गाथा में स्पष्ट कर दिया कि परमार्थ में जो नहीं तिष्ठते, माने शुद्धात्मा में जो निर्विकल्प अवलंबन नहीं लेते, शुद्धात्मा में जो निर्विकल्प अनुभूति नहीं करते, वे अगर तप को भी करें, व्रत को भी करें, तो उनका वह व्रत भी बाल व्रत है, उनका वह तप भी बाल व्रत है। अब ये कथन करना हर किसी के बस की बात नहीं, इसलिए उन्होंने कुंदाचार्य ने कहा ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात जिनवर कहते हैं, जिनेन्द्र भगवंतों ने, सर्वज्ञ भगवंतों ने ये बात कही है। आगम की जब जब चर्चा आएगी, आगम की जब भी बात आएगी, आगम हमेशा तीर्थंकरों का ही होता है, छद्मस्थों का आगम नहीं होता, वो तीर्थंकर की परंपरा से यदि कोई छद्मस्थ कथन करता है तो वो कथन छद्मस्थ का नहीं कहलाता, वो कथन तीर्थंकरों की परंपरा का होने से वो सर्वज्ञ का ही कथन कहलाता है। और इसी तरीके से आज अपनी जो आचार्यों की परंपरा चल रही है, सर्वज्ञ भगवान के आगम की परंपरा चल रही है, वो आज तक विद्यमान है। एक पूजन है जिसमें ये बात आई है, तीर्थंकर की ध्वनि गणधर ने सुनी, अंग रचे चुनी ज्ञान मई, सो जिनवर वाणी शिव सुखदानी, त्रभुवन मानी पूज्य भई। ये परंपरा उनकी चल रही है, आज भी गुरुदेव के माध्यम से जो भी तत्व का रहस्योद्घाटन किया जा रहा है वह कोई उनका निजी नहीं है, वो उनका नहीं है, वो तो सर्वज्ञ की वाणी में आया हुआ तत्व है और परंपरा से आचार्यों की वाणी में उपलब्ध है, और अभी वर्तमान में भी समय सारादि ग्रंथों में कुंद आदि आचार्यों की वाणी में उपलब्ध है। उसका मर्म जगत जानता नहीं था कि ये पुण्य पाप ही हैं, ये पुण्य पाप संवर निद्रा के कारण नहीं है, एकमात्र आत्मा ही उपादेय है, एकमात्र ज्ञान ही मोक्ष का कारण है, का क्रिया मोक्ष का कारण नहीं है, जड़ की क्रिया कर्म रूप होती है, पुण्य कर्म रूप भी होती है, पाप कर्म रूप भी होती है, द्रव्य कर्म रूप भी होती है, भाव कर्म रूप भी होती है, लेकिन धर्म रूप नहीं होती है, ज्ञान धर्म रूप होता है। इसलिए ये परंपरा से गुरुदेव ने भी जो बात विश्लेषण की, जिस मर्म को खोला, वो मर्म सर्वज्ञ कथित मर्म है, इसलिए वह यह वाणी भले आज गुरुदेव के मुख से निकली और खुलासा करने में आई है, लेकिन वाणी तो सर्वज्ञ की ही है, तत्व वस्तु स्वरूप का है। सर्वज्ञ की वाणी में भी तत्व दिखाया जाता है, तत्व क्रिएट नहीं होता है, मोक्ष का मार्ग दिखाया जाता है, मोक्ष का मार्ग क्रिएट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जिनेन्द्र भगवान भी मोक्ष मार्ग के बनाने वाले नहीं हैं, पर बने बनाए मोक्ष मार्ग के स्वरूप के दिखाने वाले। हमारे जितने ज्ञानियों की परंपरा है वे भी वस्तु का मर्म जो दिखाते हैं वो केवल जैसा है वैसा दिखाते हैं, वो कोई उनके द्वारा निर्मित नहीं है, वो उनका कहना, उनके द्वारा कहा गया कहना ये व्यवहार कहलाता है। परमार्थ से वस्तु तो वस्तु की है, और वस्तु स्वरूप जो है बताने वाला मुख्य वक्ता अगर होता है इस जगत में तो तीर्थंकर प्रमुख वक्ता होते हैं, गणधर उसके बाद वाले वक्ता होते हैं। गणधर की परंपरा में जो आचार्य होते हैं वे निर्ग्रंथ आचार्य उसकी परंपरा के संधारक होते हैं, उनको धारण करने वाले होते हैं, और उसी परंपरा में आगे चल के ज्ञानी पंडित भी हुए वे भी उसी परंपरा को निर्वाह करने वाले होते हैं। अविरत सम्यक दृष्टि दशा में भी कोई है तो वो भी उसी परंपरा का निर्वाह करने वाला है। कदाचित कभी किसी ज्ञानी की इन परंपरा में अगर कोई कारणवश अपनी कमजोरी से शंका पैदा हो जाए तो आपको जो शंका का निवारण करने को प्रमाण खोजना होगा वो अपने से पूर्व के आचार्यों का प्रमाण खोजना होगा। और ये निश्चित है कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी तक जो भी कथन आएंगे वो सम्यक दृष्टि ज्ञानी भी इस बात में सावधान होता है कि उसका वचन पूर्वाचार्यों से विरोध नहीं खाता। कथन भेद है तो नए के कथन से भेद हो सकता है, अभिप्राय भेद नहीं हो सकता। आचार्य जिनेन्द्र भगवान जिनवाणी ये कहे कि ज्ञान मोक्ष का हेतु है, और कोई ऐसा हो गए कि सम्यक दृष्टि कोई कह दे कि ज्ञान नहीं कर्म मोक्ष का हेतु है, ये तीन काल में संभव नहीं। ज्ञानी भी वही कहेगा जो जिनागम की परंपरा में आया है, और जिनागम की परंपरा में वही आया जो गणधर ने दिव्य ध्वनि में झेला है, और दिव्य ध्वनि में भी वही आया जो वस्तु स्वरूप में है। इसलिए ये सारी चीजें जो हैं स्वयमेव व्यवस्थित हैं, इनमें किसी का कर्तृत्व नहीं है, ये वस्तु का स्वरूप है। केवल इतना है इनको दर्शाने वाले जो हैं प्रमुख तीर्थंकर हैं, उनके बाद गणधर हैं, उनके बाद आचार्य हैं, उनके बाद ज्ञानी देशवृत्ति पंडित हैं, और उनके बाद में सब अविरत सम्यक दृष्टि तक के जितने भी जीव हैं और उनमें गुरुदेव वर्तमान में मुख्य हैं। इस तरह से ये परंपरा ज्ञानियों की चलती है, और उसमें ये वस्तु का स्वरूप एक ही प्रकार का आता है, भिन्न भिन्न प्रकार का नहीं आता है। मिथ्या दृष्टि का तो एक वचन कभी कैसे ही होता है, कभी किसी प्रकार का होता है, उसके तो श्रद्धान में डगमगाएपना होता है, डोलता है उसका श्रद्धान। इसलिए कभी कहो तो पुण्य को उपादेय मान लेवे, कभी कहे नहीं पुण्य बंध का भी कारण है, कभी पुण्य को हे भी कह दे, कभी पुण्य को उपादेय भी मानने लगे और उनमें भेद करने लगे। यानी साधारण पुण्य तो भले बंध का कारण है और संसार का कारण है, लेकिन जिन परिणामों से तीर्थंकर प्रकृति बनती है ऐसा उत्कृष्ट पुण्य जी तो निर्जरा का कारण कहे, ऐसा है ही नहीं। कर्म कोई भी होगा वो बंध का ही कारण होगा, ज्ञान जो है अनुभव ज्ञान वो एकमात्र मोक्ष का कारण होगा, ऐसा इन गाथाओं में पुण्य पाप के अधिकार में कर्ता कर्म का जहर तो पहले ही निकाल दिया, आत्मा अनात्मा का भेद ज्ञान तो पहले अध्याय में करा दिया, और कर्ता बुद्धि दूसरे अध्याय में निकाल दी, वो जहर अलग हो गया, मैं पर का करता हूँ या पर मेरा कार्य है ये तो है ही नहीं, लेकिन राग का भी मैं करता नहीं हूँ ये बता दिया कर्ता कर्म में, और अब पुण्य पाप अधिकार में ये मर्म खोल रहे हैं कि पुण्य पाप के परिणाम चाहे ज्ञानी के होवें चाहे अज्ञानी के होवें, कर्म का धर्म कर्म का स्वरूप बंद कराने का है, निर्जरा कराने का नहीं है। ज्ञानी के भी उन परिणामों से निर्जरा नहीं होती, बंद होता है, और अज्ञानी के तो अभिप्राय पूर्वक मिथ्यात्व पूर्वक अज्ञान पूर्वक सारी क्रियाएं होने से अज्ञानी की सारी क्रियाएं अज्ञानमय हैं और ज्ञानी की सारी क्रियाएं ज्ञानमय कही जाती। ये गजब बात है, ज्ञानी का विषय भोग का परिणाम भी कदाचित आवे तो भी ज्ञानी के सारे परिणामों को व्यवहार से बंध का कारण नहीं कहा जाएगा और उनके लिए निर्जरा का कारण कहेंगे। निर्जराधिकार में बात आती है कि ज्ञानवंत के भोग निर्जरा हेतु हैं और मिथ्यात्वी को वही बंध फल देते हैं, ये अचरज की बात समझ नहीं आवही, पूछे कोई शिष्य गुरु समझा वही। इसलिए ऐसे ही कोई कहे कि ज्ञानी के पुण्य पाप के परिणाम तो संवर निर्जरा के कारण मानो, कि नहीं ज्ञानी का भी आश्रव का परिणाम है वो, चाहे पुण्य भाव हो। अरे सूक्ष्म पुण्य भाव ज्ञानी के जब तक वर्तता है पंचास्तिकाय में उसको सूक्ष्म कहना चाहिए, पर समय कहा गया है, और जो उसको शुभ भाव को उपादेय मानता है उसके लिए स्थूल पर समय कहा गया। पर समय माने वहां मिथ्या दृष्टि पराश्रित बुद्धि पर में धर्म देखने वाला बहिरात्मा ऐसी स्थिति। तो मगर वहां से जो सूक्ष्म पर समय बना कहा है वहां मिथ्यात्व सहित नहीं होता है पर समय बना, लेकिन जब तक परिणति में परिपूर्ण वितरकता नहीं आती है तब तक का सारा उसका पर्णमन में जो भी थोड़ा सा अबुद्धि पूर्वक पराश्रयता का राग होता है वह राग भी पर समय बना में आता है, और जहाँ पराश्रय सर्वथा छूट जाता है, स्वभाव में श्रेणी सन्मुख हो जाता है, छपक श्रेणी में आरूढ़ होता है, उस काल में सारा पराश्रयपना धीरे धीरे छूटता हुआ बारहवें गुण स्थान में वितराग बन जाता है, और बारहवें गुण स्थान में अंतर मुहूर्त के अंदर क्षयोपशम जनित अज्ञान का अभाव करके सर्वज्ञ दशा प्राप्त कर लेता है, ऐसा ये मार्ग दर्शाया है। तो इस पुण्य पाप अधिकार में भी आचार्य कुंद कुंद ने ऐसा भेद ज्ञान कराया है कि जीव कहाँ अटक सकता है। जिसको स्वापर की पहचान नहीं वो तो अटका ही हुआ है, जिसको कर्ता कर्म का भेद ज्ञान नहीं वो भी अटका हुआ है, लेकिन जो पुण्य पाप में उपादेय बुद्धि रखता है, शंबर निर्जरा की बुद्धि रखता है, बंध का कारण नहीं जानता है वो भी अटका हुआ है, वो भी सुलटने वाला नहीं है, वो भी मोक्ष पाने वाला नहीं है। इसलिए पुण्य पाप अधिकार में ये बात चल रही है कि आगम में भी ज्ञान को मोक्ष का कारण कहा है। ये 152 नंबर की गाथा का अर्थ ऐसा लिखा है कि परमार्थ में अस्थित जो जीव तप करता है और व्रत धारण करता है, उसके वो सभी तप और सभी व्रत सर्वज्ञ देव ने बाल तप कहे हैं, बाल व्रत कहे हैं। बाल माने अज्ञानी के व्रत और अज्ञानी के तप कहे। टीका इसकी लिखी अमृतचंद्राचार्य ने, दो लाइनों की, दो पंक्तियों वाली टीका लिखी संस्कृत में। उनके मूल शब्द संस्कृत के ऐसे हैं, ज्ञान मेव मोक्षस्य कारणम्, ज्ञान ही मोक्ष का कारण है विहितम, ऐसा कहा गया है। ज्ञान मेव मोक्षस्य कारणम विहितम, ज्ञान ही मोक्ष का कारण कहा गया है। परमार्थ भूत ज्ञान शून्यस्य, और जो जीव परमार्थ को नहीं जानते, जो अपने ज्ञान स्वभाव से शून्य माने उसके ज्ञान के अनुभव से रहित हैं, ऐसे जीवों के अज्ञान कृत यो, अज्ञान कृत माने अज्ञान के निमित्त से होने वाले जो व्रत और तप हैं, ये दोनों प्रकार के जो कर्म हैं कर्मणो, वे सब कर्म माने व्रत और तप रूप जो कर्म हैं वो अज्ञान भाव से होने के कारण बंध हेतुत्वात्, बंध के हेतु होने से बाल व्यपदेशेन, उनको बाल नाम से कहा जाता है। बालक के जैसे अज्ञान होता है, छोटा बालक बाल बोध बच्चा बालक होता है, उसका अज्ञान है, अभी उसके ज्ञान नहीं है, इसलिए उसका नाम बाल है। सच पूछो जैनागम में बाल शब्द की व्याख्या अधिकतम ये है कि 8 वर्ष के नीचे वाले बाल ही होते हैं, लेकिन 8 वर्ष के बाद यदि वे समझना चाहें, भेद ज्ञान करना चाहें, आत्मानुभव करना चाहें, तो उनमें उनकी पात्रता होती है। अब नहीं करे तो 7-8 वर्ष वाले की तो क्या कहें, 60 वर्ष वाला भी हो लेकिन वो भेद ज्ञान ना करे तो वो भी बाल शब्द से संबोधित किया जाएगा, अज्ञानी शब्द से संबोधित किया जाएगा। इसलिए बंध हेतुत्वात् बाल व्यपदेशेन प्रतिषिद्धत्वे सति, बाल माने अज्ञानी के व्रत तप होने से उनका निषेध किया गया है, और उनका निषेध करके तस्य एव माने उस ज्ञान ही को मोक्ष हेतुत्वात् मोक्ष के हेतु रूप में स्वीकार किया गया। ये मैंने मूल संस्कृत से आपके सामने बात रखी, हिंदी में तो ऐसा उसका अनुवाद लिखा है, वो अनुवाद इस तरीके का है कि आगम में भी ज्ञान को ही मोक्ष का कारण कहा है, ऐसा सिद्ध होता है, क्योंकि जो जीव परमार्थ भूत ज्ञान से रहित हैं उनके अज्ञान पूर्वक किए गए व्रत तप आदि कर्म बंध के कारण है, इसलिए उन कर्मों को बाल संज्ञा देकर उनका निषेध किया जाने से ज्ञान ही मोक्ष का कारण सिद्ध होता है। मैंने इस गाथा में आगम के आधार से सिद्ध किया कि मोक्ष का कारण एकमात्र ज्ञान है, ज्ञान माने ज्ञान का अनुभव है, अनुभव की दशा वो मोक्ष का कारण है, अन्य जो विकल्पों की दशा है, करने की दशा है, चाहे वो मन के विकल्प हों, चाहे वो वचन के विकल्प हों, चाहे वो काया के निमित्त से होने वाले विकल्प हों, और चाहे वे अशुभ हों और चाहे वे शुभ हों, उत्कृष्ट जाति का भी शुभ विकल्प हो, पर वह विकल्प बंध का कारण है, मोक्ष का कारण नहीं है। एक ज्ञान मात्र की अनुभूति, एक ज्ञायक में एकाग्रता, वो ही मोक्ष का कारण है, अन्य कोई नहीं। भले इसमें कोई ये कह सकता है कि हम तो कभी अभी ज्ञान में स्थिर हो ही नहीं सकते, तो आचार्य कहते न हो सको, लेकिन सत्य बात को तो सत्य समझ लो। जब भी तुम होगे स्थिर, ज्ञान की स्थिरता से ही तुम आगे बढ़ोगे, और ज्ञान में अंतर्मुहूर्त अगर टिक जाओगे तो केवल ज्ञान हुए बिना नहीं रहेगा। कल्याण का परिपूर्ण मार्ग ज्ञानाश्रित है। क्यों? क्योंकि ज्ञान है वह आत्मा है, आत्मा है वह मोक्ष का मार्ग है। स्वयं तो मुक्त स्वरूप है ही आत्मा, लेकिन जो परिणति उस आत्मा में जुड़ेगी, एकाकार होगी, अनुभव करेगी, वो परिणति भी पुण्य पाप से रहित होकर वो परिणति भी मोक्ष दशा को प्राप्त करेगी। इसलिए आचार्य ने आगम के आधार से इसको भी ज्ञान से ही मुक्ति का नियम दर्शाया है। और अब आगे जो 153 नंबर की गाथा आई है उसमें ये लिखा है कि ज्ञान ही मोक्ष का हेतु है, अज्ञान बंध का हेतु। बहुत खुलासा कर दिया, एक को बंध का हेतु सिद्ध कर दिया और एक को मोक्ष का हेतु सिद्ध किया। अब इसमें दो नाम अलग आए, ज्ञान मोक्ष का हेतु ये लिखा और अज्ञान को बंध का हेतु लिखा, लेकिन ये प्रकरण चल रहा है पुण्य पाप का, तो अज्ञान का हेतु अज्ञान ही बंध का हेतु ये कहा, तो जो पुण्य पाप हैं वे वास्तव में अज्ञान के निमित्त से होते हैं, उनका स्वभाव ज्ञानमय कभी नहीं होता है। अरे कदाचित ज्ञानी जीव के अगर पुण्य पाप का परिणाम है तो ज्ञानी जीव का पुण्य परिणाम में यद्यपि उपादेय बुद्धि नहीं है, इसलिए सम्यक है उसकी दृष्टि, ज्ञान भी सम्यक है, तथापि यदि अवलंबन में कमजोरी होने से ज्ञानी को पाप से हटकर पुण्य में आना होता है, अथवा कभी पुण्य से गिरकर पाप में भी जाना होता है, तथापि दृष्टि की निर्मलता वहां वर्तने से, दृष्टि का जोर निरंतर होने से, उस जोर के बल से वह आत्मा उस अशुभ भाव से छूट के शुभ की तरफ आया, और शुभ को छोड़ के शुद्ध की तरफ गया, और शुद्ध में अपने ज्ञान स्वभाव में लीन होता है, तभी उसको मुक्ति होती है, अन्य कोई उपाय मुक्ति प्राप्त करने का है नहीं। इसलिए 153 नंबर की गाथा में दो बातें आ रही हैं कि ज्ञान मोक्ष का हेतु है और अज्ञान बंध का हेतु है। 153 नंबर गाथा कैसी है अब उसको पढ़ते हैं। बदनीय मणि धरंता शीलानि तहा तवम चको बंता परमठ बाहिराजे निबाणम तेण विंदंती व्रत नियम को धारे भले तपशील को भी आचरे परमार्थ से जो बाह्य वो निर्वाण प्राप्ति नहीं करे। क्या कह रहे हैं? भले जीव व्रत नियम को धारण करे और तप को और शील को आचरण करे, लेकिन परमार्थ से बाहर। ये परमार्थ क्या है? शुद्धात्मा का नाम परमार्थ है, ज्ञायक स्वभाव का नाम परमार्थ है, दृष्टि के विषय का नाम परमार्थ है, केवली जिसको बोला जाता वो परमार्थ है, शुद्ध जिसको बोला जाता वो परमार्थ है, ऐसा परमार्थ जो है, जो मुनि जिसको कहते वो परमार्थ है। वो ज्ञायक आत्मा का एक नाम मुनि है, गजब बात है। यानी यहाँ जो निर्ग्रंथ दशा वाला मुनि पना है वो एक अलग चीज है, लेकिन भगवान आत्मा भी मुनि नाम से जाना जाता है। वो भगवान आत्मा परमार्थ कहलाता है। तो जो परमार्थ से बाहर होते हैं, जो परमार्थ में नहीं टिकते हैं और उससे बाहर रहते हैं, उनके भले व्रत होवें, भले तप होवें, अरे वे 28 मूल का निर्दोष आचरण करें, घोर तपश्चर्या करें, फिर भी उन्हें निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती। प्रथमान योग के भारी उदाहरण हमारे सामने हैं। आदिनाथ ने 1000 वर्ष तक तपश्चर्या की, मगर तपश्चर्या से मोक्ष नहीं हुआ। जब उन्होंने अंतर्मुहूर्त को स्वभाव का आलंबन लिया, तभी उनको केवल ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति हुई। और बाहुबली ने भी यही किया, घोर तपश्चरण किया, एक अंगूठे के बल खड़े होकर 1 वर्ष तक तपश्चरण किया, लेकिन वह तपश्चरण भी उन्हें संसार से परित नहीं कर सका, मोक्ष नहीं दिला सका, केवल ज्ञान उपलब्ध नहीं करा सका। और जिस समय उनके मन का विकल्प संच अबुद्धि पूर्वक वाला कोई विकल्प जो चल रहा था, भरत चक्रवर्ती जब उनके चरण शरण में गए और कि एक साल से घोर तपश्चरण किया और आपको केवल ज्ञान नहीं हुआ है, उनके लिए संबोधन करने गए, उनके सामने नतमस्तक हुए और कहा कि आप मालूम नहीं किस विकल्प में उलझ गए हैं, इस सारे दुनिया के विकल्प झूठे हैं, न तो कोई किसी को जीतने वाला है, न किसी की पृथ्वी है, न किसी का छह खंड है, सारा वस्तु तो जो है वो अपनी वस्तु अखंड है, वो अखंड पे दृष्टि देने से अपना पर्याय में पूर्णपने मोक्ष मार्ग की सिद्धि होती है, ऐसा कुछ उपदेश का विकल्प उनको हुआ। उन्होंने बोला उनके अंदर का विकल्प निकलने का काल आ गया था, तो वो विकल्प निकल गया और उन्होंने फिर निर्विकल्प होके अखंड का आश्रय किया, छह खंड का नहीं अखंड का आश्रय किया, और अखंड का आश्रय करते ही साथ उन्हें केवल ज्ञान की उपलब्धि हुई। इससे सिद्ध होता है अखंड स्वभाव के आश्रय से ही केवल ज्ञान और मुक्ति होती है, और मोक्ष मार्ग में भी अखंड के स्वभाव के आश्रय से मोक्ष मार्ग में गुणस्थान चढ़ता है। गुणस्थान चढ़ने का भी कारण क्रिया नहीं है, जगत तो क्रिया को मुक्ति का कारण भी मानते हैं, पर क्रिया जो है चाहे पुण्य क्रिया हो पाप क्रिया को तो वैसे कोई मुक्ति का कारण नहीं मानता, लेकिन पुण्य क्रिया को व्यवहारवासी सभी मोक्ष का कारण मानते। लेकिन एक बात जरूर है, कोई निश्चयवासी भी ये गलती कर बैठे कि चूंकि दोनों क्रियाएं बंध का कारण हैं, तो हम चाहे प्रचुर रूप में पाप में ही क्यों ना प्रवर्तें, और वो पाप में प्रवर्तन करते हुए तत्व की बात करते हुए वो चाहे कि मैं मुक्ति पा लूंगा, तो उसको भी होने वाली नहीं है, बल्कि उल्टा उसका ये नुकसान अवश्य होगा कि वर्तमान में निरंतर अगर अशुभ में प्रवर्तन करोगे तो डायरेक्ट नरक और निगोद जाने का रास्ता सीधा तैयार होगा, तो वहां दोबारा कब निकलोगे, कब संगी पंचेंद्री पना पाओगे, और कब इस सच्चे कुल को पाओगे, कब देव सात गुरु का सानिध्य बनेगा, कब तत्व को समझने समझने का अवसर आएगा, और कब ऐसा पुरुषार्थ करके निर्ग्रंथ दशा धारण करोगे, कब मुनिपना आए और आत्म स्वरूप में डूबने का, डुबकी लगाने का, प्रचुर स्वसंवेदन करने का अवसर आएगा, कहा नहीं जा सकता। इसलिए निश्चयाभाषी भी अपना बुरा करता है, व्यवहाराभाषी भी अपना बुरा करता है, लेकिन जिसने सम्यक ज्ञान के बल पर वस्तु का यथार्थ निर्णय किया है उसे कभी भी संसार परिभ्रमण नहीं करना पड़ता है। इसलिए व्रत नियम को भले धारण करे, तप शील को भी आचरण करे, लेकिन जो परमार्थ से बाहर हैं, परम पदार्थ का जिन्हें ज्ञान नहीं है, परम पदार्थ को का जिन्हें अनुभूति नहीं है, वे जीव निर्वाण को नहीं पाते। देखो भरत चक्रवर्ती कोई तपश्चर्या नहीं की, कोई व्रतादि नहीं की, कपड़ा उतारते साथ ध्यान मग्न हुए, निर्ग्रंथ दशा आई और ध्यान मग्न होते साथ अंतर आत्मा में ऐसा अखंड पने से आश्रय लिया कि एक क्षण को भी बाहर नहीं आए और अंतर मुहूर्त अपने स्वरूप में टिके रहे, तो उनका मोक्ष और मोक्ष का मार्ग अंतर मुहूर्त में प्रशस्त हो गया, उन्हें देर नहीं लगी। ये हमारे प्रथमान योग के प्रमाण है, चरणानियोग में भी यही प्रमाण है, शुद्धोपयोग के बल से जीव गुणस्थान चढ़ता है, शुभोपयोग अशुभोपयोग तो संसार में भटकाने के कारण है। इसलिए चरणानियोग में भी ये बात आती है, उपकरणानियोग में तो बहुत स्पष्ट कहा है कर्म की निर्जरा का कारण शुद्ध भाव है, शुभ भाव से कर्म निर्जरा नहीं होती है, ऐसा निमित्त नैमित्तिक का ज्ञान करणानियोग ने कराया। और द्रव्यानियोग तो ये कहता है कि तुझे अगर मोक्ष दशा प्रकट करनी है तो जो मोक्ष स्वभावी आत्मा है उसमें जब तक तू एकाकार होके तन्मय नहीं होगा, कम से कम अंतर मुहूर्त को, तब तक तेरी पर्याय में मोक्ष दशा नहीं प्रगटेगी। ऐसा लगता है कि इन बातों का समर्थन ये चारों अनियोगों से होता है, और चारों अनियोग एक ही बात का समर्थन करते हैं कि परमार्थ को पाए बिना कोई भी जीव संसार से परित संसार से पार नहीं हो सकता है। अमृत चंद्राचार्य ने इस 153 गाथा की जो टीका लिखी वो तीन पंक्तियों में टीका लिखी, देखो उसमें भी संस्कृत सुनाते हैं, सरल संस्कृत है। ज्ञान मेव मोक्ष हेतु, यानी मोक्ष का हेतु ज्ञान ही है, ये अर्थ होता है ज्ञान मेव मोक्ष हेतु, ज्ञान का मोक्ष का हेतु ज्ञान ही है। तद अभावे, उस ज्ञान के अभाव होने पर स्वयं अज्ञान भूतानाम, स्वयं अज्ञानमय जो प्रणमन कर रहे हैं, ऐसे कौन अज्ञानी नाम, ऐसे अज्ञानियों के अंतर्व्रत नियम, अंतरंग में व्रत का परिणाम हो, नियम का भी परिणाम हो, शील का भी आचरण हो, तप का भी आचरण हो, इत्यादि शुभ कर्म सद्भावे अपि। इस प्रकार से शुभ कर्म का सद्भाव होने पर भी मोक्षाभावात, मोक्ष का उनका अभाव होता है। भले वे व्रत कर रहे हैं, नियम कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, 28 मूल गुण का पालन कर रहे हैं, अंतरंग दृष्टि अंतरंग भाव से कर रहे हैं, लेकिन स्वयं अज्ञान रूप परिणम रहे हैं, ज्ञान स्वभाव का अनुभव नहीं किया है, ज्ञान स्वभाव का उनके अभाव वर्त रहा है, तो उन्हें मोक्ष का भी अभाव है। क्योंकि मोक्ष का सद्भाव ज्ञान स्वभाव के सद्भाव का अनुभव चले तो मोक्ष का सद्भाव हो जाए, और ज्ञान स्वभाव का अभाव हो, उसकी अनुभूति ना हो, तो मोक्ष का भी सद्भाव नहीं होता। इसलिए इसको तो मोक्ष अभाव होने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। एक बात हो गई, अभी दूसरी बात करते हैं। अज्ञानमेव वंदे हेतु, देखो इनको कंपैरिजन करके भी देखें, पहले लिखा है ज्ञानमेव मोक्ष हेतु और अब लिख रहे हैं अज्ञानमेव वंदे हेतु, यानी ज्ञान ही मोक्ष का कारण है, और अब दूसरी पंक्ति में लिख रहे हैं अज्ञान ही बंध का कारण है, और ऊपर लिखा तद अभावे, उस ज्ञान के अभाव में स्वयं अज्ञानियों के जो व्रत तप नियम संयम तप आदि शुभ कर्म अंतर्दृष्टि अंतरंग में भी होते हैं, मन पूर्वक होते हैं, तो भी उनके मोक्ष का अभाव होता है। और यहाँ लिखा है तद अभावे स्वयं ज्ञान भूता नाम, किसका अभाव होने पर, अज्ञान भाव जो बंध का कारण है उसका अभाव होने पर स्वयं ही ज्ञानी होते हुए, वहां लिखा है स्वयं ही अज्ञानी होते हुए और यहाँ लिखा स्वयं ही ज्ञानी होते हुए, ज्ञानी नाम माने ज्ञानियों के बहिर व्रत नियम शील तप प्रवृत्ति शुभ कर्म असद भावे अपि, वो ज्ञानी के बाह्य व्रत भी ना हो, बाह्य नियम भी ना हो, बाह्य शील बाह्य तप प्रवृत्ति इत्यादि जो कर्म है इनका सद्भाव न होने पर भी मोक्ष सद्भावात, उनके मोक्ष का सद्भाव होता है। इससे सिद्ध होता है कि ज्ञान ही मोक्ष का हेतु है, क्योंकि ज्ञान के अभाव में स्वयं अज्ञान रूप होने वाले अज्ञानियों के अंतरंग में व्रत नियम शील तप इत्यादि शुभ कर्मों का सद्भाव होने पर भी मोक्ष का उनके अभाव है, और अज्ञान ही बंध का कारण है, क्योंकि उसके अभाव में स्वयं ही ज्ञान रूप होने वाले ज्ञानियों के बाह्य व्रत नियम शील तप इत्यादि शुभ कर्मों का असद भाव होने पर भी, यानी इन रूप वो प्रणमन ना करता हुआ होने पर भी उसके मोक्ष का सद्भाव है। गजब बात है। भावार्थ में तो पंडित जयचंद जी लिखते हैं ज्ञान रूप प्रणमन ही मोक्ष का कारण है, अज्ञान रूप प्रणमन ही बंध का कारण है। व्रत नियम शील तप इत्यादि शुभ भाव रूप शुभ कर्म कहीं मोक्ष का कारण नहीं है, ज्ञान रूप परिणमित ज्ञानी के बेशुभ कर्म न होने पर भी वह मोक्ष को प्राप्त करता है, और अज्ञानी अज्ञान रूप परिणमित होता हुआ अज्ञानी के बेशुभ कर्म होने पर भी बंध को प्राप्त होता है, मुक्ति को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए यहाँ इन गाथाओं में और 153 नंबर तक की गाथा में और उसकी अभी गद्य टीका में ये बात खुलासा हो गई कि पुण्य पाप जो हैं वे मोक्ष के हेतु नहीं है। मोक्ष तो ज्ञान से होता है, परमार्थ के आश्रय से मुक्ति होती है, शुद्धात्मा के आश्रय से मुक्ति होती है, दृष्टि का विषय जो कहलाता है उसके आश्रय से धर्म शुरू होता है, उसी के आश्रय से गुणस्थान में वृद्धि होती है, और उसी के आश्रय से गुणस्थान की पूर्णता होती है, उसी के आश्रय से केवल ज्ञान प्रकटता है, और उसी के आश्रय में अयोग केवली दशा होकर सिद्ध दशा की प्राप्ति होती है, ऐसा इसमें कहा है। इसमें जो छंद आया है इसको अपन बाद में लेंगे आज के समय में। अब जितना 10-12 मिनट का टाइम बाकी है उसमें जिसको जो चर्चा करनी है, जो प्रश्न की बात करनी है, वे आप करें और उसमें अपन विचार करेंगे।
पंडित जी टीका में ऐसा कहा कि ज्ञान ही मोक्ष का हेतु है, ज्ञान ही मोक्ष का हेतु है, और भावार्थ में लिखा ज्ञान रूप परिणमन ही मोक्ष का कारण है। तो आपने भी जो थोड़ा बताया था फिर से बताएंगे इसमें ज्ञान का क्या मतलब होता है?
देखो एक बात बता दें, ज्ञान मोक्ष का हेतु है का मतलब वो ज्ञान कौन सा ज्ञान, जो ज्ञान ज्ञायक में एकाकार हो रहा है वह ज्ञान परणमन जो है वो मोक्ष का कारण है, क्योंकि मोक्ष स्वयं पर्याय है और जो ज्ञान अनुभव में परिवर्तता है वह ज्ञान भी पर्याय है और पर्याय से पर्याय की निष्पत्ति होती है, कारण पर्याय रूप है और कार्य भी पर्याय रूप है, आश्रय त्रिकाली द्रव रूप है, ख्याल में है ना। इसलिए यहाँ ज्ञान मोक्ष का हेतु ये सामान्य कथन किया, अर्थ करने में खुलासा कर दिया कि ज्ञान का परिणमन, ज्ञान अकेला ज्ञान तो अनादि से है जीव के पास में, लेकिन उसमें परिणमन ज्ञान में आपने ज्ञान की पर्याय का परिणमन ज्ञायक से एकाकार रूप नहीं हुआ आज तक, इसलिए मोक्ष नहीं हुआ है। इसलिए यहाँ भले ज्ञान मेव मोक्ष हेतु लिखा है तथापि ज्ञान का अर्थ है ज्ञान का परिणमन ही मोक्ष का हेतु है ऐसा जानना, अन्य अर्थ उसमें नहीं लगेगा, उसमें यही अर्थ लगेगा कि ज्ञान का परिणमन, क्योंकि वो जो मोक्ष का प्रगटता होगी वो ज्ञान की पर्याय में होगी। ज्ञायक आत्मा तो मोक्ष स्वरूप ही है, उसे तो परिणमन करना नहीं है, उसे तो मोक्ष प्रगट करना नहीं क्योंकि प्रगट मोक्ष स्वरूप है, लेकिन परिणति में मोक्ष प्रकट करना है तो वो ज्ञान का जो परिणमन है वह परिणमन भी कौन सा, जो ज्ञायक से परमार्थ से एकाकार हुआ है और अपने अपने आप की पर्याय स्वभाव को भूल गया है और अपने में द्रव्य स्वभाव ही अनुभव कर रहा है, ऐसा एकाकार हुआ जो ज्ञान का परिणमन वह मुक्ति का कारण है, ज्ञान को मुक्ति का।
और दूसरे शब्द में कहे तो वो ज्ञान रूप परिणमन ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग की बात है।
बराबर बराबर, ज्ञान रूप परिणमन ही सम्यक दर्शन है, ज्ञान रूप परिणमन ही सम्यक ज्ञान है और ज्ञान रूप परिणमन ही चारित्र है। पर कैसे, जरा सुनिए, ज्ञान रूप परिणमन सम्यक दर्शन कैसे है? ज्ञान तो ज्ञान गुण का परिणमन है, वो श्रद्धा गुण का परिणमन कैसे बन जाएगा? ऐसे बन जाता है के प्रतीति ज्ञान करता है, कौन करेगा प्रतीति, निर्णय भी ज्ञायक की, निर्णय भी ज्ञान करेगा और वो उसमें तन्मय भी ज्ञान होगा और उसमें एकत्व की प्रतीति भी ज्ञान करेगा। इसलिए सम्यक दर्शन की उत्पत्ति भी में मूल कारण ये ज्ञान है और स्व को स्वरूप पर को पर रूप जानना ये ज्ञान का काम है, तो वहाँ ज्ञान ही स्वपर प्रकाशक होता है, इसलिए सम्यक ज्ञान भी स्वपर प्रकाशक ही होता है। और चारित्र भी ज्ञान में कैसे आएगा कि ज्ञान का स्वरूप स्थिर होना, स्थिरता का नाम चारित्र है और स्थिर होता है ज्ञान, और ज्ञान जब ज्ञान में स्थिर होता है तो चारित्र भी प्रकट होता है। इस तरह से एक ज्ञान में सम्यक भी आ गया, उसी ज्ञान में सम्यक ज्ञान भी आ गया, उसी ज्ञान में सम्यक चारित्र आ गया और इसलिए उस ज्ञान में अभेद रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग आ गया और मोक्ष मार्ग क्या आ गया, वो ही ज्ञान मोक्ष रूप परिणम गया।
बहुत बढ़िया,
क्या आया कि
हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
हाँ जी,
एनी अदर क्वेश्चन?
तो पहले सम्यक दर्शन होता है कि सम्यक ज्ञान?
देखो ऐसा है, पहले सम्यक दर्शन ही होता है, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, याबिन ज्ञान चरित्रा सम्यकता न लहे सो दर्शन धारो भव्य पवित्रा, पहले सम्यक दर्शन होता है। लेकिन देखो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में सातवें अधिकार में पंडित जी ने एक बात बहुत बढ़िया चलाई, सम्यक ज्ञान के प्रकरण में चलाई है, यानी ज्ञान का जो प्रकरण लिया है उसमें सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान के उस प्रकरण में ये बात चलाई कि जहाँ प्रारंभिक अवस्था में अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ है और वो जीव सम्यक सन्मुख है और कहना चाहिए सम्यक सन्मुख के साथ में उस पंच लब्धियों में प्रवर्तन करना चाह रहा है, आगे बढ़ रहा है, वहाँ तो जो ज्ञान अभी सम्यक नहीं बना है मगर प्रगट ज्ञान है, वह प्रगट ज्ञान तत्व निर्णय का कारण है और उसके निमित्त से प्रतीति भी आएगी बाद में, ख्याल में आया कि नहीं। वो ही तत्व ज्ञान रूप निर्णय करने वाला ज्ञान अभी भले सम्यक नाम नहीं पाया है, क्योंकि सम्यक नाम सम्यक श्रद्धान से सम्यक नाम पाता है, इसलिए वो ज्ञान अभी निर्णय का कारण बनेगा, निर्णय का माने एकाग्र होने का और एकत्व बुद्धि करने का कारण बनेगा, और बाद में जब एकत्व बुद्धि हो जाएगी तो वो एकत्व बुद्धि तो कहलाएगा सम्यक, और वह सम्यक दर्शन के साथ में वर्तने वाला जो ज्ञान होगा उसका नाम सम्यक ज्ञान होता है। ले सम्यक दर्शन को कारण कहा है और सम्यक ज्ञान को कार्य कहा है। छेड़ालाकार ने स्पष्ट लिखा है, सम्यक साथे होए ज्ञान पे भिन्न आराधो। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान दोनों साथ होते हैं, परंतु इनकी आराधना भिन्न कही गई है। सम्यक साथे ज्ञान होए पे भिन्न आराधो, लक्षण श्रद्धा जान दुहु में भेद अबाधो। श्रद्धा तो लक्षण है और वो सम्यक ज्ञान उसका लक्ष्य है। तो लक्षण श्रद्धा जान यानी श्रद्धा जो है वो जो ज्ञान जो है वास्तव में वो ज्ञान दोनों रूप परिणम रहा है, प्रतीति रूप भी परिणमा और वही ज्ञान स्वपर को जानने रूप भी परिणमा, इसलिए दोनों एक साथ हुए ऐसा कहलाता है। जैसे युगपत होते हुए प्रकाश दीपक ते हुई, दीपक जब जलता है तो दीपक पहले जलता है और प्रकाश बाद में होता है, ऐसा नहीं है। दीपक जलने के साथ ही साथ प्रकाश होता है, परंतु दीपक कारण है प्रकाश कार्य है, इसलिए कारण का नाम पहले लिया जाता है कार्य का नाम बाद में लिया जाता है। इसी तरह सम्यक दर्शन कारण है और ज्ञान सम्यक ज्ञान कार्य है, इसलिए सम्यक के साथ में भी होता है तथापि कारण कार्य का भेद करके सम्यक दर्शन को पहले कहा जाता है और सम्यक ज्ञान को बाद में कहा जाता है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में अमृतचंद्राचार्य ने तो इतना लिखा, यद्यपि सम्यक दर्शन ज्ञान चार्य ये तीनों मुक्ति के कारण है, तीनों मिलकर मोक्ष मार्ग को निर्मित करते हैं, लेकिन जहाँ उपासना का प्रश्न आए तो तत्रादौ सम्यक्तम, वहाँ आदि में प्रारंभ में पहले सम्यक् की उपासना करो। तत्रादौ सम्यक्तम समुपाश्रयणीयम अखिल यत्नेन, समस्त प्रयत्न लगाकर समस्त प्रकार से उसका उद्यम करके पहला अभ्यास करो सम्यक दर्शन प्रकट करने का। सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा तो ज्ञान भी सम्यक हो जाएगा और आचरण भी सम्यक हो जाएगा, इसलिए पहला काम सम्यक दर्शन की आराधना है। और ये आराधनाएं क्रम से ही होती हैं, पहले होती है दर्शन आराधना, दर्शन माने सम्यक दर्शन आराधना, बाद में होती है ज्ञान आराधना, उसके बाद होती चरित्र आराधना, और उसी चरित्र आराधना के साथ साथ तप आराधना। ये चार आराधनाएं मोक्ष मार्ग में होती हैं, लेकिन पहला ही होती है दर्शन आराधना, दूसरी ज्ञान, इसलिए इनमें क्रम है और इस क्रम को भी इस तरह समझ लेना कारण कार्य के भेद वाला क्रम है। लेकिन अगर देखा जाए तो उत्पत्ति होने में दोनों में कोई समय भेद नहीं, जब दर्शन हुआ उस ही क्षण में ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान पड़ा, उनमें क्षण भेद भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक समय में प्रथम समय में सम्यक दर्शन हुआ अब वो जो ज्ञान है वो दूसरे समय में सम्यक ज्ञान कहलाए, ऐसा नहीं। सम्यक दर्शन जब हुआ उसके साथ में ज्ञान भी हुआ, वह ज्ञान सम्यक ज्ञान हुआ, ऐसा।
एक प्रश्न है कि शुद्धता और एक रूपता इसमें कोई डिफरेंस है या तो पंच परम्परिणामिक भाव में जो एक रूप शुद्धता उसमें दोनों में कुछ डिफरेंस है या एक ही है?
देखिए ऐसा है कि शुद्धता जो होती है पहले तो दो प्रकार की शुद्धता पाई जाती है, एक तो द्रव्य स्वभाव की त्रैकालिक शुद्धता जो सामान्य भाव रूप है पारिणामिक भाव रूप है, और एक शुद्धता पारिणामिक भाव में तन्मय होने वाला ज्ञान वो तन्मय होकर के शुद्ध होता है वो पर्याय की शुद्धता कहलाती है। तो वो द्रव्य की शुद्धता और पर्याय की शुद्धता इनमें इतना अंतर है, द्रव्य की शुद्धता त्रिकाल होती है प्रगटती नहीं है प्रगट है, और पर्याय की शुद्धता त्रिकाल नहीं होती है प्रगटती है और फिर धारा प्रवाह वो शुद्ध शुद्ध रूप परिणमन चलता है। अब हमें ये देखना है कि वो हम उसको दृष्टि का विषय रूप आत्मा कहें किसको, तो कहे दृष्टि का विषय रूप आत्मा तो जो त्रैकालिक अपना ज्ञान स्वभाव है वो ही है और वो ही उस वो ही त्रिकाली शुद्ध है। दृष्टि का विषय ज्ञायक आत्मा है वो त्रिकाली शुद्ध है, तो वो त्रिकाली शुद्धता ही दृष्टि का विषय है। पर्याय की शुद्धता तो जन्मती है और उस काल में वो तुम्हारे अलग से प्रतीति में नहीं आती है, उस काल में शुद्ध त्रिकाली शुद्धता में सब पर्याय की शुद्धता गर्भित हो जाती, और एक पर्याय की नहीं अनंत गुणों की पर्यायों की शुद्धता उस त्रिकाली के अनुभव के काल में उसमें गर्भित होती है, वहाँ पाई जाती है, गर्भित माने पाई जाती है। मगर त्रिकाली शुद्धता त्रिकाली रहती है और प्रकट होने वाली शुद्धता पर्याय रूप रहती है, ऐसा इसमें अंतर है।
बहुत सुंदर, थैंक यू
पंडित जी।
अच्छी बात
पंडित जी।
हाँ जी।
ये मेरा प्रश्न ये अभी तो जो विषय है उससे संलग्न नहीं है, लेकिन डेढ़ घंटे पहले हमारे घर में हम अपने आपस में फैमिली मेंबर में चर्चा हो रही थी, उसमें से एक प्रश्न निकला तो मैं आपके समक्ष रजू करता हूँ। स्वरूप और स्वभाव ये दोनों एक ही चीज है कि दोनों के मायने अलग अलग है?
नहीं नहीं एक ही चीज है। स्वभाव है वो स्वरूप है, स्वरूप है वो स्वभाव है, ऐसा जानना, उनमें अंतर नहीं है।
उसमें अपरिणामी और परिणामी से हम नहीं घटा सकते?
किसमें? स्वरूप में और स्वभाव में?
हाँ, मानो कि परिणामी को एक में रखो स्वभाव में, स्वरूप में, और अपरिणामी को स्वभाव में रखो, एम
नहीं नहीं सुनिए,
तो क्या गलती हो जाएगी?
जो स्वभाव है स्वरूप भी दो प्रकार का, एक तो त्रिकाली स्वरूप और एक क्षणिक स्वरूप। तो जो त्रिकाली स्वरूप है वो तो ध्येय है, और जो क्षणिक स्वरूप है वो ध्यान करने वाला ध्याता है। तो इसलिए इनमें स्वरूप कहो तो भी वही बात घटित होगी, और त्रिकाली स्वभाव और क्षणिक स्वभाव कहो तो भी वही बात घटित होगी। इसलिए इनमें शब्द नाम का अंतर है, अभिप्राय का अंतर नहीं है। इतना जरूर है कि द्रव्य में जब स्वरूप और स्वभाव की बात करोगे तो वो त्रिकाली कहलाएगा, पर्याय में स्वरूप और स्वभाव की बात करोगे तो वो क्षणिक कहलाएगा, ऐसा है।
एक मैं दूसरा तर्क रखता हूँ कि अगर हम स्वरूप बोले तो वो अभेद दृष्टि का विषय होता है, और स्वभाव दृष्टि स्वभाव बोले तो वो भेद रूप हो जाता है, ऐसा हम कह सकते हैं?
नहीं, स्वभाव तीन प्रकार के होते हैं, सुनिए जरा। एक तो अखंड द्रव्य का स्वभाव है, वो भी स्वभाव होता है। एक गुणों के अनेक स्वभाव हैं, गुण जो हैं अनंत हैं, वे अनेक स्वभाव हैं, और एक एक गुण की पर्याय होती है, वो भी पर्याय स्वभाव है। तो स्वभाव तीन तरीके से हो गए, अखंड द्रव्य स्वभाव, उनके गुण भेद रूप अनेक स्वभाव, और उनके परिणमन रूप पर्याय स्वभाव, ऐसे तीन भेद हैं। लेकिन अपना जो दृष्टि का विषय है वो अभेद स्वभाव है, उस अभेद स्वभाव में अनंत गुणों के स्वभाव गर्भित हैं, लेकिन उनका विकल्प गर्भित नहीं है।
अच्छा, क्या ये गुरुदेव का जो एक वाक्य है ना कि अनंत गुण स्वरूप आत्मा उसके एक रूप स्वरूप को दृष्टि में लेकर उसमें एकाग्रता का प्रयत्न करना वो प्रथम में प्रथम शांति सुख का उपाय है?
बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। उन्होंने क्या लिखा? अनंत गुण स्वरूप
लिखा है।
हाँ, अनंत गुण स्वरूप, क्योंकि ये भेद हो गई दृष्टि। जब आप द्रव्य को अनंत गुण स्वरूप देखते हो और कहते हो तो ये भेद कथन हो गया, पर हमें भेद के माध्यम से भेद नहीं देखना है, हमें भेद से तो वस्तु समझना है। क्योंकि अगर सर्वथा उसको अभेद ही रूप कहा जाए तो उसमें अनंत गुण नहीं पाए जाएंगे, ऐसा कहने में आएगा। लेकिन भेद पहले ही बोल दिए गए, अनंत गुणात्मक एक भेद एक स्वरूप, तो वे अनंत स्वरूप तो गुण रूप हो गए, मगर वे भेद नहीं है, सत्ता एक ही है। इसलिए अनंत गुणात्मक एक स्वरूप को दृष्टि का विषय बनाने पर धर्म होता है, दृष्टि का विषय बनाने पर
अभेद की
का मार्ग प्रशस्त है।
बराबर, बहुत बढ़िया, थैंक यू पंडित जी, थैंक यू।
अच्छा,
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया
पंडित जी, टाइम हो रहा है रजनी भाई।
हाँ, हो गया टाइम, हो गया।
हाँ, रजनी भाई जिनवाणी स्तुति।
चैतन्य में ही मग्न हो, चैतन्य दर्शाते अहो, निर्दोष श्री सर्वज्ञ प्रभु वर जगत साक्षी हो विभो सच्चे प्रणेता धर्म के शिव मार्ग प्रगटाया प्रभो कल्याण वांछक भवि जनों के आप ही आदर्श हो शिव मार्ग पाया आपसे भवि पा रहे अरु पाएंगे स्वाराधना से आप सम ही हुए हो रहे होएंगे तव दिव्य ध्वनि में दिव्य आत्मिक भाव उद्घोषित हुए गणधर गुरु आमनाय में शुभ शास्त्र तब निरमित हुए निरग्रंथ गुरु के ग्रंथ ये नित प्रेरणाए दे रहे निज भाव अरूपर भाव का शुभ भेद ज्ञान जगा रहे इस दुष्म भीषण काल में जिन देव का जब हो विरह तब मात सम उपकार करते शास्त्र ही आधार है तब मात सम उपकार करते शास्त्र ही आधार है जावाणी के ज्ञान ते सुजे लोका लोक सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तू डो बोलो जिनवाणी मात नो जय
हो जय हो जय हो
जय हो जयेंद्र पंडित जी
This was very good, Sruti.
Hello.
Hello. Hello.
Hello.
Sruti Bhav.
Manisha Ben. Manisha Ben.
Rajni Bhai. So sir, guys.
આપણે શિકાગો ના